सो हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 13वां अध्याय चौथे श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। श्रुतस्य पुंसाम सुचिर श्रमस्य नन्वञ्जसा सुरिभिरिडि तो अर्थः तत्तद् गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की
जय।
जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक तथा दीर्घ काल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्य कलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदयों के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं जो अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तात्पर्य, दिव्य छात्र वे हैं जो प्रमाणिक गुरु से वेदों को सुनकर प्रशिक्षित बनने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। उन्हें न केवल भगवान के कार्यकलापों के बारे में सुनना चाहिए अपितु उन भक्तों के भी दिव्य गुणों के विषय में सुनना चाहिए जो अपने हृदय के भीतर निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी भगवान के चरण कमलों से विलग नहीं किया जा सकता। निसंदेह भगवान सदैव प्राणियों के हृदयों के भीतर रहते हैं, किंतु वे इसके विषय में नहीं जान पाते क्योंकि वे मोहनी शक्ति, मोहनी भौतिक शक्ति द्वारा ठगे जाते हैं। तथापि भक्त भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, इसलिए वे अपने हृदय के भीतर भगवान के चरण कमलों का सदैव दर्शन कर सकते हैं। भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के ही तुल्य गौरवशाली होते हैं। वस्तुतः भगवान उन्हें अपनी अपेक्षा अधिक पूजनीय मानने की संस्तुति करते हैं। भक्त की पूजा भगवान की पूजा से अधिक शक्तिमान है, इसलिए दिव्य छात्रों का कर्तव्य है, स्टूडेंट्स, कि वे शुद्ध भक्तों के बारे में उसी रूप में सुने जिस तरह भगवान के वैसे ही भक्तों द्वारा बतलाया गया हो। क्योंकि जब तक कोई भगवान या उनके भक्त के विषय में कुछ नहीं बतला सकता, वह तब तक स्वयं शुद्ध भक्त जब तक वह स्वयं शुद्ध भक्त ना हो। ओम अज्ञान तमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्व पदान्तिकं वन्देहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। तो यहाँ पे प्रसंग चल रहा है कि मैत्रेय जी सृष्टि की रचना के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने बताया ब्रह्मा जी ने कैसे अलग अलग जीवों की उत्पत्ति की, फिर भी संसार भर नहीं रहा था, है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा हाय, ये मेरा भाग्य ही है कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी संसार में जीव नहीं बढ़ रहे। इसी तरह से भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग सिक्योर फील करते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हों तो, है ना। लोग सोचते हैं कि मुसीबत के समय काम आएंगे, वो ये नहीं सोचते मुसीबत आ क्यों रही है, और ना ही वो ये सोचते हैं कि रिश्तेदार ही मुसीबत है। तो वो सोच रहे थे तो ब्रह्मा जी के शरीर से दो जीव उत्पन्न हुए, है ना। उनमें से एक था स्वयंभू मनु और दूसरा शत्रुपा, है ना। तो मनु और शत्रुपा आपस में विवाहों का और उनकी अनेक संतानें हुई, फिर उन संतानों के आगे संतानें हुई, तो संसार भर गया। तो विदुर जी ने बोला मैत्री जी को कि मुझे आप मनु के बारे में और बताओ। क्यों बताओ मनु के बारे में? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना। और वो कहते हैं कि मनु भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आप भी भगवान के शुद्ध भक्त हो, है ना। सो अगर मैं शुद्ध भक्त के मुख से शुद्ध भक्त के बारे में सुनूंगा तो मुझे लाभ होगा, है ना। सो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भक्तों के चरित्र के बारे में सुनना। हम श्रीमद् भागवतम देखते हैं, चैतन्य चरितमृत देखते हैं, चैतन्य भागवत देखें अगर हम, तो उसमें भगवान के बारे में भी वर्णन है और भगवान के भक्तों के बारे में भी वर्णन है। भागवत में कई चैप्टर्स ऐसे आते हैं, चैतन्य चरितमृत में कई ऐसे अध्याय हैं, विशेषकर शुरू में जहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो भक्ति रूपी वृक्ष है, चैतन्य महाप्रभु रूपी जो वृक्ष है उसकी शाखाओं का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो बोल रहे हैं कि देखो ये मेन मेन शाखाएं हैं, फिर इसकी ये भक्त उप शाखाएं हैं। तो हजारों भक्तों का उन्होंने वर्णन किया। आप गौर गणोदेश दीपिका नामक ग्रंथ है उसको पढ़ें तो उसमें सारे भक्तों के बारे में दे रखा है, है ना, कि ये भक्त पहले वो था, ये भक्त वो था, ये भक्त वो था, ये भक्त वो था। सो कई बार व्यक्ति सोच सकते हैं कि यार क्या चल रहा है, हमें तो भगवान के बारे में बताओ, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान की शिक्षाओं के बारे में बताओ। तो कल हम लोग वृंदावन में थे तो वहाँ पर एक भक्त से मिला मैं, जो कि पहले दिल्ली में ही रहता था, अभी वृंदावन शिफ्ट हो गया। वो भक्त बोल रहे हैं कि अभी मैं भगवान के घर आ गया हूँ। तो मैंने उनसे पूछा तो जो इस्कॉन टेम्पल है और वृंदावन में क्या फर्क है? कह रहे नहीं वो एक है लेकिन वृंदावन वृंदावन है। मैंने बोला आप कुछ और लॉजिक दो वृंदावन आने के लिए। आप बोलो कि वृंदावन में बहुत अच्छे भक्त रहते हैं, दिल्ली में अच्छे भक्त नहीं रहते हैं, तो मैं अच्छे भक्तों का संग करने के लिए आऊं, मैं वो बात स्वीकार करता हूं। लेकिन आप बोलो कि वृंदावन और इस्कॉन के जो मंदिर है पूरे संसार में उसमें कुछ भेद है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता, है ना। इस समय हम दिल्ली में नहीं बैठे हुए, हम लोग भगवत धाम में बैठे हैं, भगवान के घर बैठे हैं। भगवत धाम का, भगवान के घर का क्या अर्थ है? भगवान के घर का अर्थ है जहाँ पर भगवान स्वामी भाव में है, जहाँ पर भगवान केंद्र बिंदु में हर चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रही है, वो भगवान का घर है। तो क्योंकि इस कौन के सभी मंदिर वो वहाँ पर भगवान केंद्र बिंदु में है, इसीलिए भगवान और इसलिए वृंदावन और इस्कॉन मंदिरों में कुछ भी भेद नहीं है, है ना। इसी जो बात वृंदावन और इस्कॉन के मंदिरों के लिए सही है, वो बात भगवान और भगवान के भक्तों के लिए भी उचित है, ये बात है ना। हम कभी भी भगवान को भगवान के भक्तों से अलग नहीं देख सकते, है ना। अगर हम जब भी भगवान कृष्ण का चिंतन करें तो हमें भगवान कृष्ण का चिंतन भगवान कृष्ण के भक्तों के साथ करना चाहिए। हाँ, भगवान कृष्ण यहाँ तो बंशी के साथ हैं, तो गायों के साथ हैं, गोप ग्वालों के साथ हैं, गोपियों के साथ हैं, ब्रजवासियों के साथ हैं, किसी के साथ होना चाहिए। भगवान कभी भी अकेले नहीं रहते। प्रभुपाद ने अनेक बार अनेक स्थानों पर बताया कि जिस तरह राजा उसके साथ हमेशा उसकी प्रजा रहती है, कोई ना कोई रहता है, राजा कभी अकेला नहीं रहता, इस प्रकार भगवान जो है वो कभी अकेले नहीं रहते। सो भगवान की भक्ति करने का अर्थ है कि केवल भगवान की भक्ति नहीं करो, भगवान की भक्ति करने का अर्थ है भगवान की भक्ति करना और साथ ही भगवत भक्तों की भक्ति करना, है ना। अगर हम भगवान की भक्ति और भक्तों की सेवा में भेद करें तो नार की बुद्धि है, गलत विचार है, कनिष्ठ भक्त कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में भक्तों की जो वर्गीकरण किया गया, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, तो जब कनिष्ठ भक्त की परिभाषा दी जाती है तो कनिष्ठ भक्त की परिभाषा में कहा जाता है कि वो भगवान के विग्रह को बहुत महत्व देता है, भक्तों को महत्व नहीं देता, है ना। पढ़िए आप लोगों ने। सो जो भगवान के भक्तों को महत्व नहीं देता वो कभी भी अच्छा भक्त नहीं बन सकता। वो अच्छा भक्त क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि शिवजी पार्वती को कह रहे हैं, आराधना नाम सर्वेशा विष्णु आराधना परम तस्मात परतरम देवी तदीय नाम समर्चना तदीय वस्तु, तदीय वस्तु अर्थात वैष्णव। सो तदीय वस्तु मतलब जो किसी की संपत्ति है, जैसे भगवान कृष्ण की संपत्ति है वैष्णव। भगवान कृष्ण का फूलों का हार, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनकी वंशी, उनकी गायें, ब्रजवासी, ये सब तदीय वस्तु हैं। सो तदीया नाम समर्चना, सबसे महान उपासना है कृष्ण की उपासना। लेकिन हे देवी, हे पार्वती, प्लीज आप ये जान लो कि कृष्ण की उपासना से भी एक श्रेष्ठ चीज है। भगवद गीता में कृष्ण कह रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। नहीं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, लेकिन शिव जी कह रहे हैं कि है श्रेष्ठ। तदीय नाम समर्चनम, जो कृष्ण की वस्तु है, जो कृष्ण की संपत्ति है, उसकी उपासना कृष्ण की उपासना से भी श्रेष्ठ है ना। ये उच्च कोटि का विचार है, कृष्ण संबंधी वस्तु नाम, है ना। अगर हम कृष्ण संबंधी वस्तुना को प्रापंच की बुद्धया, अगर हम उस पे विचार करें कि नहीं नहीं माया है, ये माइक माया है, ये लाइट माया है, ये बोर्ड माया है, तो ये प्रापंच की कत्या बुद्धया, ये अच्छा विचार नहीं है। फल्गु वैराग्य कि नहीं ये चीज जो है ये माया है, इसका उपयोग नहीं करूंगा, त्याग देता हूँ इसको, ये फल्गु वैराग्य। हरि संबंधी वस्तुना, हमें ये समझना चाहिए हर वस्तु कृष्ण की संपत्ति है, और कृष्ण की संपत्ति है तो अपनी सेवा में मत लगाओ। माँ घृदा कस्य सिद्धनम्, ये आपकी संपत्ति नहीं है, जिसकी संपत्ति है उसकी सेवा में लगाओ। तो अगर भक्त, अगर हम लोग वैष्णवों को कृष्ण की संपत्ति को अगर हम पूजनीय मानेंगे, उनका सत्कार करेंगे, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अगर हम भक्तों का सम्मान करेंगे, भक्तों की पूजा करेंगे, तो क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, तो हम लोग भी बहुत ही जल्दी शुद्ध भक्त बन जाएंगे। दूसरे भक्तों में खोट निकाल के शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे। अगर हम सोचें कि उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, तो शुद्ध भक्त नहीं बन पाएंगे कभी भी, है ना। शुद्ध भक्त हम बन पाएंगे जब हम दूसरे भक्तों को पूजनीय समझेंगे, अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो भी हम उनका सम्मान करेंगे, है ना। अपीचे सुदुराचार भजते माम अनन्य भा, साधु रेव सम्मान, उसको भी भक्ति मानो, क्योंकि ठीक है वो गलती हो गई उससे, लेकिन है तो भक्त नहीं, तो जो गलती कर रहा है लेकिन भक्ति कर रहा है, उसको भी भगवान जहाँ कह रहे हैं कि उसको सम्मान दो, उसको भक्त मानो, उसकी निंदा मत करो। तो जो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, हाँ, उसके बारे में अगर हम कुछ गलत बात बोलेंगे तो कितना भारी नुकसान होगा। वैष्णव निंदा जो है, वैष्णव निंदा नाम अपराध में से एक है, वैष्णव निंदा करके कभी भी हम शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। वैष्णव में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है वैष्णव में कि नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि गंगार परश हिले पश्चाते पावन, कि गंगा में तो बहुत बार डुबकी लगाओगे तो प्योरीफाई हो गए, तो पवित्र हो गए, हाँ, लेकिन दर्शने पवित्र करो ऐ तुम्हार गुण। लेकिन आप में इतनी ताकत है कि आपके केवल दर्शन मात्र से ही, हाँ, एक वैष्णव के सिर्फ दर्शन करने से ही हमारा जो चित्त है वो निर्मल हो जाएगा, है ना। इतनी शक्ति है, वो शक्ति कहाँ से आई, वो शक्ति कहाँ से आई, वो शक्ति युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं विदुर जी को, जब विदुर जी सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करके वापस आए थे, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, है ना, तो जब वो आए तो युधिष्ठिर महाराज ने उनकी पूजा की विदुर जी की, हाँ, और बोला भवद विदा भागवताम, भवद विदा भागवताम्स, हाँ, आगे क्या था, भवद विदा भागवता तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, हाँ, आप जो है आप तीर्थों को तीर्थ स्थान बनाने की ताकत रखते हो, आप में इतनी शक्ति है कि आप तीर्थ स्थान बना सकते हो, तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, तो ये शक्ति आई कहाँ से, अंतस्तेन गदाभृता, ऐसी शक्ति आपके पास इसलिए आई क्योंकि आपके हृदय में गदाभृता अर्थात कृष्णा स्वयं विराजमान है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान तो सभी जगह विराजमान है, भक्त के हृदय में भी हैं और अभक्त के हृदय में भी हैं, लेकिन अभक्त जो है वो भौतिक माया से मोहित होकर इस बात को भूल चुका है, इसीलिए उसमें वो शक्ति नहीं है। लेकिन जो भक्त है वो सदैव इस बात को याद रखता है। हाँ, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। हाँ, जो जो साधु है, जो वैष्णव है, हमेशा इस बात को याद रखता है कि कृष्ण मेरे हृदय में स्थित है। और हमेशा वैष्णव जो है, जो भक्त है, हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदय में देख ले, जो हृदय की तरफ देखता है भगवान के दर्शन कर लेता है, नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसलिए दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग। और भक्त तीर्थ स्थानों को भी तीर्थ बनाने की ताकत रखता है। भक्तों का इतना महत्व है कि स्वयं भगवान कृष्ण इस बात को दिखाने के लिए भक्त के रूप में आ गए। स्वयं भक्त के रूप में आ गए ये दिखाने के लिए कि देखो भक्तों का कितना महत्व है। भगवत गीता, भागवत, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितमृत में बहुत सी शिक्षाएं दे रखी हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कार, है ना, माँ में वैश्यसी सत्यं ते प्रति जाने प्रियोसी में। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो ये जो सारी शिक्षाएं हैं कि मेरा ध्यान करो, मेरी भक्ति करो, मेरा भजन करो, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मुझे बहुत ही भक्ति भाव से, बहुत ही भक्ति भाव से मेरा भजन करो, मुझे फल फूल तुलसी मुझे जो है भेंट करो। तो कैसे भेंट करें, क्या प्रक्रिया है, क्या सोच होनी चाहिए, क्या मानसिकता होनी चाहिए, क्या चेतना होनी चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा एक भक्त के माध्यम से। जितनी भी हमारे शास्त्रों में शिक्षाएं हैं, हाँ, वो शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं भक्तों के आचरण को देख के, भक्तों द्वारा समझकर। नहीं तो जो शास्त्रों की शिक्षाएं हैं वो केवल एक किताबी ज्ञान बन के रह जाएगा, है ना। भक्त हैं तो हम ये जान सकते हैं उनको देखकर कि जो शास्त्रों में लिखा गया है वो केवल किताबी ज्ञान नहीं है, उसके अंदर बहुत पावर है, उसके अंदर बहुत शक्ति है, और उसके उसको हम जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा, हम लोग सुखी हो जाएंगे, है ना। तो ये सब हम देख सकते हैं भक्तों के माध्यम से, भक्तों के उदाहरण के द्वारा। अगर भक्त नहीं होंगे हम कभी इस बात को समझ नहीं पाएंगे, है ना। भक्त हैं तो हम इन बातों को समझ सकते हैं। जब वल्लभ भट्ट चैतन्य महाप्रभु से मिले तो वल्लभ भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि आपको स्पर्श करने की बात तो दूर, हाँ, कि आपको स्पर्श कर लें या आपको अपने घर में इनवाइट कर लें, आपको देखने मात्र से जीवों का कल्याण हो जाता है, आपको देखने मात्र से। तो यही बात भक्तों के लिए भी उपयुक्त है। इसीलिए हमें श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और चैतन्य चरितमृत जितने प्रिय हैं उतने ही प्रिय हमें प्रभुपाद लीलामृत भी है, नहीं? हम प्रभुपाद लीलामृत क्यों पढ़ते हैं? मैं बहुत से भक्तों से मिला हूँ और 100 में से 100 भक्तों की यही विचार होता है, यही रियलाइजेशन होती है कि जब वो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं तो उनकी भक्ति बढ़ जाती है। हो सकता है आपका भी ऐसा अनुभव हो, आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ो, आपकी भक्ति, आप देखोगे आपका जब इम्प्रूव हो जाएगा, आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगी, आप में सेवा वृत्ति बढ़ जाएगी, वो सब सिर्फ प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने से हो जाएगा, है ना। जब आप प्रभुपाद के वीडियोस देखोगे, उसमें आप जैसे प्रभुपाद के एक वीडियो है फाइनल लेसन, उसमें आप देखोगे प्रभुपाद कितने बीमार हैं, लेकिन प्रभुपाद फिर भी भागवतम ट्रांसलेशन किए जा रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद फिर भी पूरे संसार में जा रहे हैं प्रीचिंग करने के लिए। हाँ, सो प्रभुपाद के कुछ जो शिष्य हैं उनका इंटरव्यू भी छपा, और उन्होंने बोला कि एक बार मैं वृंदावन मंदिर के बाहर खड़ी हुई थी, वो माता जी ने बोला, और प्रभुपाद लंदन जा रहे थे प्रीचिंग के लिए, तो उनको दो तीन भक्तों ने पकड़ के उनको गाड़ी में बिठा रहे थे। हाँ, बिल्कुल शरीर में जान नहीं है, बहुत तबीयत खराब है, हाँ, लेकिन फिर भी प्रीचिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ, अगर इतनी तबीयत खराब हो, लोग बोलेंगे भैया बड़े रहने दो मुझे लेकिन शीला प्रभुपाद क्योंकि भगवान का संदेश जगह जगह पहुंचाना चाहते थे, इसलिए इतनी तबीयत खराब। तो उन्होंने बोला कि जब वो प्रभुपाद को उठाकर गाड़ी में बिठा रहे थे, तो प्रभुपाद ने मुझे देखा और मैं प्रभुपाद को, हमारी नज़रें मिली आपस में, तो उन्होंने मतलब ये सोच के इतने हैरान रह गए कि इतनी खराब हालत में भी वो कृष्ण सेवा के बारे में सोच रहे हैं, है ना। इतनी तबीयत ठीक नहीं है भौतिक दृष्टि से, फिर भी वो सोच रहे हैं कि प्रीचिंग इम्पॉर्टेंट है, है ना। प्राण आचे यार से हेतु प्रचार, जब तक शरीर में जान है, जब तक शरीर के अंदर सांस चल रही है, प्रीचिंग करो। हाँ, ये बात कैसे समझेंगे, ये बात हम प्रभुपाद को देख के समझेंगे, है ना। और कैसे भी समझ में नहीं आ सकती, कोई और तरीका है ही नहीं इस बात को समझने के लिए। अगर आप प्रभुपाद के कितने शिष्यों को देख लो, प्रभुपाद ने हजारों शिष्य बनाए, बहुत से छोड़ के चले गए और बहुत से आज भी पूरे मनोयोग से सेवा में लगे हैं। आप उन भक्तों से बात करो तो प्रभुपाद से कभी कुछ एक लाइन आपस में बात की होगी, उसी को आज तक उन्होंने अपने हृदय में संभाल के रखा हुआ है, सहेज के रखा हुआ है ना। प्रभुपाद ने किसी से पूछ लिया, यार तुम्हारे पैर में छाला है, इसमें ये दवाई लगा लो। हाँ, या प्रभुपाद ने किसी माता जी को उसके बच्चे के बारे में पूछ लिया, हाँ, उसके सिर पे हाथ फेर दिया बच्चे के सिर पे, उस बात को आज तक याद करके रखा हुआ उस बात को, है ना। और एक माता जी बता रही थी कि प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप कीर्तन करो, विशाखा माता जी को प्रभुपाद ने बोला कि आप कीर्तन करो, उन्होंने बोला मुझे कीर्तन करना आता नहीं था, और इतने सारे लोग थे हजारों, उनके सामने उन्होंने कीर्तन किया, तो कीर्तन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन प्रभुपाद ने उनको बोला वेल डन, बहुत अच्छा कीर्तन किया तुमने, है ना। इस बात को आज भी वो अपने हृदय में संजो के रखे हुए हैं, और ये बात उनको कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत है, है ना। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम कि हमें, और ऐसा नहीं है कि ये बात शीला प्रभुपाद तक खत्म हो गई, है ना। शीला प्रभुपाद की जय, बाकी कुछ नहीं, है ना, बिल्कुल गलत बात है ये, है ना। या ऐसा भी नहीं है, हाँ, कि मेरे गुरु महाराज की जय, बात खत्म हो गई, है ना। भक्त का मतलब भक्त है, है ना, भक्त का मतलब भक्त है। सारे जो भी इस कौन का हिस्सा है जो भी चैंटिंग कर रहे हैं, जो भी प्रीचिंग में लगे हैं, वो सारे भक्त हैं, उनका सम्मान करना, उनके अच्छे गुणों के बारे में सुनना हमारे लिए लाभदायक है। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद के जो शिष्य हैं या उनके शिष्यों के शिष्य हैं उनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, बस प्रभुपाद, बस प्रभुपाद। हाँ, प्रभुपाद ने जो बोला, जो प्रभुपाद ने कहा, जो प्रभुपाद के लिए आया, वो इम्पोर्टेंट है, उससे हमारी भक्ति बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रभुपाद कॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं है कि केवल प्रभुपाद, जिस प्रकार कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं है कि केवल कृष्ण, कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब है कृष्ण और कृष्ण भक्त, उसी प्रकार प्रभुपाद कॉन्शियसनेस का मतलब है प्रभुपाद और उनके शिष्य, है ना, प्रभुपाद और उनके शिष्य, प्रभुपाद के शिष्यों के शिष्य, उनके शिष्यों के शिष्यों के शिष्य। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, हाँ, हम लोग जाने अनजाने में बहुत सारे भक्तों के प्रति अपराध करते रहेंगे, है ना। अगर कोई भक्त आया, आपने उसको देख के मुस्कुराए नहीं आप, है ना, वो भी अपराध है। आजकल भक्तों को मिलते हैं, अगर कोई भक्त हमें जानता नहीं है, हम उसकी तरफ कभी मुस्कुराते नहीं है, नहीं, हमने कभी किसी अनजाने भक्त को हरे कृष्णा बोला, हम नहीं बोलते, नहीं बोलना चाहिए, है ना, बोलना चाहिए। उससे किसे फायदा होगा, हमें फायदा होगा, और हो सकता है हम एक और नया फ्रेंड बना लें, नहीं। तो जब भी हमें भक्त मिले, ऐसा नहीं है कि केवल वो टेंपल प्रेसिडेंट ही होना चाहिए या दीक्षा देने वाला गुरु ही होना चाहिए, जो भी भक्त हो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, और अगर किसी भक्त ने अच्छा कार्य किया तो हमें उसका गुणगान करना चाहिए, उसके बारे में सुनना चाहिए। अगर हम उसको सुनेंगे तो हमारे में भी वो गुण विकसित होंगे, हाँ, हम भी उसको अपने जीवन में उतारने की हमें प्रेरणा मिलेगी। हम में, अगर हम किसी भक्त के अवगुणों की बात करेंगे तो हमारे में आ जाएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब जगाई मधाई का उद्धार किया तो उन्होंने बोला, चैतन्य महाप्रभु ने, कि अगर कोई भी निंदा करेगा तो जगाई मधाई के जो पाप है उसको पकड़ लेंगे, है ना। तो लेकिन इसका विपरीत बात यह भी सही है कि अगर हम भक्तों के गुणों की प्रशंसा करेंगे, जिस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी है और निंदाहीन थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, ना कभी किसी की निंदा करते थे और ना ही कभी किसी की निंदा सुनते थे। आमतौर पर हम लोग ये बोलते हैं, ये सोचते हैं अपने मन में कि चलो निंदा करते नहीं है, कोई कर रहा है सुन तो ले, कुछ तो सुख मिले। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला, उसने बोला, मैं तो सुन रहा था। तो वो भी अच्छी बात नहीं, हमें ना निंदा करनी चाहिए और ना निंदा सुननी चाहिए, क्योंकि अगर हम निंदा किसी की सुनेंगे, शुरुआत ऐसी होती है, हाँ, ऐसा नहीं कि शुरू से ही कोई किसी की निंदा करना शुरू कर देता है, आलोचना शुरू कर देता है, पहले सुनते हैं हम, हाय बहुत अच्छा लगता है, फिर हम उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, यार वो भक्त में वो कमी है, फिर जैसा ही हमें पहला मौका मिलता है हमारे मुंह से अचानक वो बात निकल जाती है, हाँ, फिर हम देखते हैं कि अरे हमारी चैंटिंग तो छूटी नहीं, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, तो हम ये सोच लेते हैं कि निंदा करने से कुछ तकलीफ नहीं है, हाँ, कर सकते हैं, हाँ, हो सकता है वो भक्त की निंदा करने से प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, तो फिर हम उसको करना शुरू कर देते हैं कि चैंटिंग भी नहीं छूट रही। नहीं तो आमतौर पर बोला जाता है ना कि अगर आप किसी की निंदा करोगे जब छूट जाएगा, भक्ति कम हो जाएगी, हुई नहीं भक्ति कम। तो हमें लगता है कि निंदा कर सकते हैं, सही बात तो बोल रहे हैं, गलत बात थोड़े ना बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन जिस प्रकार भक्ति धीरे धीरे बढ़ती है, उसी प्रकार भक्ति जब घटती है तो पता नहीं चलता है ना। पहले माला नहीं छूटती, माला करने में रुचि छूट जाती है, फिर माला छूटती है ना। तो ध्याय तो विपशा विषयांत संगतेशु जाएगी। अगर हम निंदा सुनेंगे तो हमारा मन उसमें लग जाएगा, अगर हमारा मन उसमें लग जाएगा तो हमें भक्तों की निंदा में रुचि आ जाएगी। अगर भक्तों की निंदा में रुचि आएगी तो ना में रुचि नहीं होगी। रुचि एक ही जगह हो सकती है, या भक्तों की निंदा कर लो या नाम में रुचि ले आओ, है ना। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि निंदा करते भक्ति छूट गई। टाइम लगता है, भगवान मौके देते हैं, भगवान बोलते हैं चल गलती होगी ना, कोई बात नहीं, अभी माला नहीं छीन रहा, ध्यान रखियो। लेकिन भक्त सोचता कुछ हुआ ही नहीं, तो बार बार गलती करता रहता है। जिस प्रकार कई लोग बोलते हैं कि भगवान राम ने इतना समय लगाया, इतना प्रयास किया हर चीज़ की, और वो रावण को पहले नहीं मार सकते थे वो। भगवान के संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से। एक कोई भक्त ने प्रश्न पूछा कि सृष्टि की रचना कैसे होती है, सृष्टि का सिंहार कैसे होता है, सृष्टि का पालन कैसे होता है। तो इसका एक ही उत्तर है, भगवान की इच्छा से। भगवान इच्छा करते हैं सृष्टि हो जाती है, भगवान इच्छा करते हैं पालन हो जाता है, भगवान इच्छा करते हैं सिंहार हो जाता है। तो जब भगवान की इच्छा से हर चीज हो जाती है, तो भगवान अपनी इच्छा करके रावण को मार क्यों नहीं दिया। और ये क्या बात हुई, अगर आप रामायण पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि भगवान राम जब लंका के द्वार पे ही पहुंच गए समुद्र पार करके, तो ही भगवान वेट कर रहे हैं, भगवान ने मैसेज भेजा कि भैया वापस कर दो। ये क्या बात हुई। तो भगवान हमारे सोच से ज्यादा दयालु हैं, भगवान हमारी सोच से ज्यादा धैर्यवान है। हम अचिंत्य है भगवान का ये गुण, और भगवान आखिरी समय तक मौका देते हैं। भगवान राम ने संदेश भेजा रावण को, अब भी लौटा दो, मैं वापस चला जाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। कौन कह सकता है ये बात भगवान के अलावा। भगवान मौके देते हैं, हजारों करोड़ों मौके देते हैं भगवान, कि कभी हो सकता है ये यू टर्न ले ले, गलत रास्ते पे जा रहा है, कभी यू टर्न ले ले और सही रास्ते पर आ जाए। इसीलिए कई बार हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, गुरु भी कुछ नहीं कर रहे, भगवान भी कुछ नहीं कर रहे, है ना। कई बार हमें लगता है कि इस कौन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या गुरु ठीक नहीं कर सकते, क्या कृष्णा ठीक नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स वो ठीक कर सकते हैं, एक सेकंड लगेगा ठीक करने में, लेकिन वो मौका देते हैं कि जो भक्त गलती कर रहे हैं वो सुधर जाएं, उनको सद्बुद्धि आ जाए और वो अच्छे से सेवा में लगे। किसी को बोलना कि तू आज से ये सेवा नहीं करेगा, ये तो बहुत ही आसान है, नहीं, बहुत ही आसान है, नहीं। सपोज ये नानक प्रभु करताल बजाएं, गलत बजा दी ताल, प्रभु आप करताल मत बजाएगा, ये तो आसान है, इसमें क्या मुश्किल है। उनके साथ बने रहना, उनको उत्साहित करना और उनको ट्रेनिंग देना कि आप अच्छे से बजा पाओ, उसमें यश है, वो भक्ति है, वो दयालुता है, वो धैर्य है। सो
भगवान अगर सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान है तो भगवान सबसे अधिक दयालु भी हैं, भगवान सबसे अधिक धैर्यवान भी हैं। इसलिए भगवान, कई बार हमें लगता है कि न्याय देने में भगवान समय लगा रहे हैं, वास्तव में भगवान समय नहीं लगा रहे होते, भगवान देरी नहीं कर रहे होते, भगवान मौका दे रहे होते हैं कि देखो आप गलत कर रहे हो, आप सुधर जाओ, आप अपने जीवन को सुधारो, आप शास्त्रों के अनुसार, भक्तों के कहने के अनुसार अपना जीवन बिताओ, है ना। तो जिस प्रकार भगवान मौका देते हैं उसी प्रकार हमें भी मौका देना चाहिए दूसरे भक्तों को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है ना। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए वो उसमें वो गलती है साइड पे करो, उसमें वो गलती है साइड पे करो, पूरा मंदिर खाली हो जाएगा, है ना। प्रभुपाद के अनंत गुणों में से जो सबसे महत्वपूर्ण गुण जो मुझे लगता है वो ये है कि